आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय फिल्म विरासत निगम से होगा पुरानी फिल्मों का संरक्षण, कहा केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने। भारतीय रेलवे का किराया दुनिया में सबसे कम। जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले होंगे सम्मानित। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मैच आज। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार पुरानी फिल्मों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन को लागू कर रही है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में डॉ मुरुगन ने बताया कि अब तक इस मिशन के अंतर्गत 1469 फिल्मों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। इन फिल्मों की अवधि 43 लाख मिनट है। इनमें फीचर फिल्में, लघु फिल्में और वृत्तचित्र शामिल हैं। डिजिटलीकृत और पुनर्स्थापित फिल्मों का रखरखाव भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार द्वारा किया जा रहा है। श्री मुरुगन ने कहा कि सरकार बंगाली सहित सभी भारतीय भाषाओं के फिल्म निर्माताओं का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपनी फिल्म सामग्री विकास, संचार और प्रसार योजना के माध्यम से फिल्मों के निर्माण और प्रचार के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता भी प्रदान करता है। राज्यसभा में आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आगे की चर्चा होगी। ये चर्चा केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा के संबोधन के साथ समाप्त होगी। इसके बाद राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू होगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे का किराया विश्व में सबसे कम है। उन्होंने कल संसद में बताया कि भारतीय रेल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में यात्रा को किफायती बनाए रखने के लिए 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी दी है। रेल मंत्री ने कहा कि पड़ोसी देशों की तुलना में भारत अपने यात्रियों को सबसे किफायती परिवहन सुविधा प्रदान कर रहा है। वस्तु मंत्रालय में सचिव नीलम शमी राव ने कहा है कि सरकार के शिल्प दीदी कार्यक्रम ने महिला उद्यमियों को अपनी आय बढ़ाने में मदद की है। उन्होंने कहा है कि कुछ शिल्प दीदियों की आय 5 लाख रुपए से अधिक हो गई है। वस्त्र सचिव ने राष्ट्रीय हस्तशिल्प और विरासत सप्ताह के मौके पर कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि इस पहल से सरकार देश की महिला कारीगरों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंच प्रदान कर रही है। मंडला जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य अंतिम चरण में है। 100% डिजिटलाइजेशन का कार्य पूरा हो चुका है। कुल 8,16,651 मतदाताओं में से 7,44,410 मतदाताओं का डिजिटलाइजेशन पूरा हो गया है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बताया,
मंडला जिले में भी चौथे नंबर पे और पहला ट्राइबल जिला था जिसने 100% डिजिटलाइज किया था। इसके पश्चात सभी हमारे जो 945 बूथ है जिसमें विधानसभा विषया में 304, निवास में 321 और मंडला में 320, टोटल 945 बूथों में 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक आज दिनांक तक बूथ स्तर पे मतदान केंद्रों पे बीएलओ या बीएलओ सुपरवाइजर के द्वारा बीएलए की उपस्थिति में, जो कि हमारे विभिन्न राजनीतिक दलों से नियुक्त किए गए हैं, उनकी उपस्थिति में बैठक कराई जा रही है और एएचडीआर की सूची का वाचन कराया जा रहा है। साथ ही साथ एक प्रति मतदान केंद्र चस्पा भी की जाएगी ताकि इस पूरी कार्रवाई का हम पंचनामा भी तैयार कर रहे हैं ताकि भविष्य में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आए किसी को या किसी को किसी नाम से दावा आपत्ति है तो उसकी सही सही जानकारी मतदाताओं को मिल सके।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को जल स्रोतों में सीवरेज का दूषित जल मिलने से रोकने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। डॉ. यादव ने कहा है कि जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरपंच एवं स्वसहायता समूहों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस आशय के निर्देश कल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जल स्रोतों के सीवरेज का दूषित जल किसी भी स्थिति में नहीं मिले, इसके लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन को दिसम्बर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन मध्यप्रदेश इस कार्य को मार्च 2027 तक पूर्ण कर राष्ट्रीय स्तर पर मिसाल पेश करेगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने गुरुग्राम स्थित इंडिगो के कॉरपोरेट कार्यालय में एक विशेष निगरानी दल का गठन किया है। डीजीसीए ने एक आदेश जारी कर इसकी घोषणा की है। इसका उद्देश्य उड़ान में देरी होने, इसके रद्द होने की स्थिति में यात्रियों को होने वाली असुविधा को दूर करना है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभाग अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि आगामी जनगणना 2027 को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक इकाइयों में जो भी परिवर्तन किए जाने हैं वे 31 दिसंबर 2025 तक अनिवार्यता कर लिए जाएं। मुख्य सचिव श्री जैन की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में भारत की जनगणना 2027 के दृष्टिगत राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। गौरतलब है कि जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 1 अप्रैल से 30 सितम्बर 2026 के दौरान 30 दिवस की अवधि में किया जाएगा। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि स्कूली बच्चों की पढ़ाई, मॉनसून इत्यादि को ध्यान में रखते हुए उक्त 30 दिन की अवधि निर्धारित की जाए। प्रदेश में 13 दिसंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नगरीय विकास और आवास विभाग ने सभी आयुक्त, नगर पालिक निगम और समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद और नगर परिषद के प्रमुख अधिकारियों को पत्र लिखकर लोक अदालत में अधिक से अधिक लंबित प्रकरणों का निराकरण किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से चंडीगढ़ के महाराजा यदुवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम 5 मैचों की टी20 श्रृंखला में 1-0 से आगे है। कटक में हुए पहली टी20 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से हराया था। सीरीज का तीसरा मैच धर्मशाला में, चौथा लखनऊ में और अंतिम मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। प्रदेश में चल रही शीतलहर के कारण कड़ाके की ठंड पड़ गई है। कई जिलों का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। शहडोल के कल्याणपुर में पारा 3.0 डिग्री सेल्सियस, उमरिया में 4.9 डिग्री, पचमढ़ी में 5.2 डिग्री, इंदौर में 5.4 डिग्री और शाजापुर के गिरवर में 5.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन और शीतलहर चलने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले के जनपद पंचायत पोहरी के ग्राम अहेरा में जिला स्तरीय जनकल्याण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के जिला एवं जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। नर्मदापुरम जिले के टारसी में सरकारी कन्या कॉलेज में कल मानवाधिकार दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर जीवन, समानता और स्वतंत्रता के अधिकार का संदेश दिया। आगर मालवा जिला चिकित्सालय सभाकक्ष में कल राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और योजनाओं की हुई समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य सहित अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की कार्ययोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कटनी में समर्थन मूल्य पर शुरू हुए धान उपार्जन में 4,580 किसानों से अब तक 42,380 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है। जिले में अब तक 38,986 किसानों द्वारा स्लॉट की बुकिंग की जा चुकी है। कटनी में किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान से भी अवगत कराने के लिए कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा रथ भ्रमण के माध्यम से निर्वायु प्रबंधन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कान्याल ने जल निगम के अंतर्गत गोपी कृष्ण समूह जलप्रपात योजना के कार्यों की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।